میشند. एक प्राणी संग्रहालय में एक दिन वहां का जो भालू था वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई और प्राणी संग्रहालय का जो मालिक था उसने बहुत कोशिश की नया भालू प्राप्त करने की, पर नया भालू नहीं मिला। और उसी समय एक व्यक्ति आया नौकरी की तलाश में, उसने कहा मुझे नौकरी चाहिए। मालिक को लगा अगर इसी को भालू बना दिया जाए तो उसे भालू की खाल दी, मुखौटा पहनाया और एक पिंजरे के अंदर डाल दिया और उसे सिखाया कैसे उछल कूद करनी है। उस व्यक्ति का के लिए ये नया जॉब था। तो सुबह से नया पोशाक पहनकर वो व्यक्ति भालुओं सी हरकतें करने लगा, पर थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गया। और वो जो पिंजरा था उसके ही बाजू में दूसरा पिंजरा था जिसमें शेर था, और उछल कूद करते करते बीच का की जो दीवार थी वो टूट गई और वो सीधा शेर के पिंजरे में गिर गया और शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी ओर बढ़ने लगा। वो इतना डर गया, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, भालू चिल्लाने लगा। शेर खूंखार था, खतरनाक था, उसकी ओर बढ़ने लगा और आकर उसके कान में कहा चुप हो जाओ नहीं तो हम दोनों की नौकरी जाएगी। ये मुखौटों की दुनिया है। हर व्यक्ति वो नहीं है जो वो दिखा रहा है। हर एक ने एक मुखौटा पहन रखा है और सोचता है कि मुखौटा केवल मैंने ही पहना है, पर जो दूसरे हैं वो भी वो नहीं है जो वो दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है जनवरी में स्वप्न देखे जाते हैं और दिसंबर आईना दिखाता है। तो आईने में देखना है सारे साल भर हमने कौन कौन से मुखौटे पहने थे। हर व्यक्ति वो नहीं है जो वो दिखा रहा है। आडंबर है, दंभ है, ढोंग है, और जिसने अपने ही इस आडंबर को और अपने इस ढोंग को और अपने ही सेल्फ डिसेप्शन को, आत्म प्रवंचना को जान लिया, वही इस ढोंग से, इस झूठ से, इस मुखौटे से स्वयं को मुक्त कर सकता है। साल बीत गया, न मालूम कितने मुखौटे हमने पहने थे, योगी होने के, तपस्वी होने के, तीव्र पुरुषार्थी होने के, सेवाधारी होने के, धारणा युक्त होने के, ब्रह्मचारी होने के। उन सभी मुखौटों के पीछे जो अस्थि चेहरा है वो एक बाप के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। और यदि हम चेत जाए, यदि हम में रूहानी जागृति आ जाए तो हम भी देख सकते हैं। सूक्ष्म चेकिन, सूक्ष्म परखने की शक्ति, सूक्ष्म लगाव, सूक्ष्म झुकाव, सूक्ष्म सहारा। अभी अभी रविवार को अव्यक्त वाणी चली थी पर आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे जो आने वाला वर्ष है उसमें क्या करना है। उसकी उन्नीस और बीस में क्या अंतर है, उन्नीस और बीस का अंतर क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। वो अंतर उन्नीस और बीस का अंतर न रह जाए। रूहानी बेहोशी, किसी मुरली में बाबा ने कहा था, एक एक कर्मेंद्रिया मकड़ी का जाल है जिसमें आत्मा फंस जाती है और सो जाती है। रूहानी जागृति इस जाल से, इस बेहोशी से, इस निद्रा से, इस मोह की निशा से स्वयं को जगाना है। बौद्ध धर्म की एक शाखा ज़ेन है, उसमें एक बहुत महान योगी कभी हुआ था जिसका नाम था किटानो गेम्पो। उसकी मृत्यु 1933 में हुई और चीन का जो एक बहुत बड़ा ज़ेन आश्रम है उसका वो मठाध्यक्ष था। उसने अपनी जीवन कहानी में तीन बातें लिखी है। लिखा कि जब मैं 20 वर्ष का था, घूमता था यहां वहां, जीवन नया था, उत्कंठा थी सत्य को जानने की। एक बार एक किसी दूसरे योगी के साथ मैं यात्रा कर रहा था। ठंड का मौसम था, सर्दी के दिन थे और वहां चलते चलते एक स्थान पर हम बैठे और उस योगी ने मुझे वो हुक्का दिया पीने के लिए और मुझे बहुत मजा आया पीकर। और एक बार पीने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं एक बार और पी सकता हूं क्या। और जैसे ही मैंने दूसरी बार मांगा, एकदम से अचानक से एक संकल्प मन में आया, अगर मैं दूसरी बार मांग रहा हूं तो तीसरी बार फिर मांगूंगा, चौथी बार फिर मांगूंगा और फिर आदत पड़ जाएगी और मैं इस आदत के वश हो जाऊंगा और गुलाम बन जाऊंगा। तुरंत उसी दिन से अभी अभी लिया और अभी अभी संकल्प कर लिया कि मैं अभी के अभी इसका त्याग कर देता हूं और छोड़ दिया हमेशा के लिए। फिर लिखा जब मैं 23 वर्ष का था, जो मुख्य आश्रम था वो बहुत दूर था, अभी अभी संन्यास लिया था, वैराग था मन में। जो छोटी शाखा थी पहाड़ों के बीच में थी, बड़ी शाखा बहुत दूर थी, ठंड का मौसम था, कपड़े नहीं थे मेरे पास ठंडी के, तो मैंने एक पत्र लिखा जो बड़ा हेडक्वार्टर से वहां पर कि मुझे ऐसे ऐसे कपड़े चाहिए। और उसी समय उसने लिखा, मैं एक किताब का अध्ययन कर रहा था जिस किताब का नाम था हाइकिंग, जिसमें अद्भुत और दैवी शक्तियां, सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाए उसका ज्ञान था। और वो पढ़ते पढ़ते ही मुझ में बहुत सारी सिद्धियां आ गई। और जब 6 मास तक कोई उत्तर ही नहीं आया वहां से। मुझे लगा मैं अपनी सिद्धि का प्रयोग करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं वो पत्र गया कहां, और वो ध्यान में जाता है और उसे पता चलता है वो पत्र तो पहुंचा ही नहीं। बाद में पता करता है हाँ ये पत्र तो वास्तव में नहीं पहुंचा। खुश होता है कि मुझे पता चल गया बिना किसी से पूछे, पर तुरंत संकल्प आता है कि ये तो सिद्धि है, अगर मैं सिद्धियों के पीछे जाऊंगा तो मेरी साधना रह जाएगी। उसी दिन उसी पल वो किताब पढ़ना बंद कर देता है। ये साधना, ये सिद्धि ही बाधा हो सकती है साधना में, क्योंकि इससे प्रसिद्धि मिलेगी, लोग पूछेंगे, लोग आएंगे, हमारी भी समस्याएं का निदान करो, हमें भी बताओ तुमने ये कैसे किया। दूर ध्वनि, दूर श्रवण, एक स्थान पर बैठ के दूर क्या हो रहा है वो जानना, किसी के मन के विचारों को पढ़ लेना, थॉट रीडिंग सिद्धियां है। योग के मार्ग पर जो भी आगे जाएगा, किसी भी क्षेत्र में किसी भी योग का अभ्यास करेगा, उसे अपने आप सिद्धियां मिलेगी, पर वो सिद्धियां ही बाधा बनेगी। जब वो 28 वर्ष का हुआ उसने लिखा मुझे चाइनीज कैलीग्राफी, चीन के जो अक्षर है उनमें बहुत रुचि उत्पन्न हो गई, इतनी रुचि कि मेरे अक्षर इतने सुंदर हो गए, अपने ही अक्षरों से मोहित हो जाता था, बहुत कुछ लिखता, दूसरों को दिखाता, दीवार पर टंगाता। और एक दिन अचानक पता चला ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां साधना करने आया हूं या कवि बनने आया हूं। तुरंत उसका त्याग कर दिया और अपनी साधना चालू की। इस योगी ने अपने जीवन के ये 3 अनुभव लिखे कि जब जब मुझे पता चला कि जो अध्यात्म के मार्ग में अहितकारी था, अनिष्टकारी था, उस सब को मुझे छोड़ना है, और वो आगे बढ़ गया। तो इस साल बहुत सारी बातें हुई, अब नया साल आ रहा है 2020। इस नए साल में हमें क्या करना है उसकी हम चर्चा करेंगे 2020 की प्लानिंग, पुरुषार्थ की प्लानिंग। तो ऐसी 20 बातों की हम चर्चा करेंगे जो हर रात सोने से पहले देखना, ये हुई ये हुई ये हुई ये हुई कि नहीं हुई, चेकलिस्ट हर दिन के लिए। और विशेष पहले 18 दिन या 21 दिन, क्योंकि कोई भी आदत स्थापित होने के लिए 21 दिन लगते हैं, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। कोई भी बात बार बार की जाए तो वह न चाहते हुए भी हमें खींचती है, चाहे पाप या पुण्य, सत्कर्म या पाप कर्म, कुछ भी। मेडिकल साइंस कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन में नए पाथवेज, नई पगडंडियां तैयार होती है न्यूरॉन्स की। एक ही चीज बार 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 की जाए तो, और जब पता है ऐसा होता है, जब बुरी आदतें पुनरुक्ति से उत्पन्न हुई है, तो अच्छी और नई और स्वस्थ आदतें भी उसी युक्ति से पुनः स्थापित होगी। तो मन का तो स्वभाव है आलस्य, इस आलस्य से उसे जगाना है, और जगाएंगे नए संकल्पों से। लास्ट संडे की मुरली में वाक्य था, श्रेष्ठ संकल्प का फल पदम गुना है, जैसे व्यर्थ संकल्प का भी फल पदम गुना है, बहुत विस्तार है। व्यर्थ सोचते सोचते कहां पहुंच जाते हैं, त्रेता में पहुंच जाते, किसी मटपंत में, द्वापर में पहुंच जाएंगे। सोचते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया। इसके लिए सोचा और किया, इसके बीच में कोई अंतर ना हो। तुरंत दान महादान, एक धक से जो झटकू वही महाप्रसाद। जो करना है अब करो, अब नहीं तो कब नहीं। तो हर दिन के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम। सबसे पहली बात, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, अव्यक्त मुरलियों की स्टडी 69 से 2017 तक 1100 अव्यक्तवाणियां हैं टोटल, हमने कितनी पढ़ी है? शायद बहुत कम। अमृत वेले वरदान लेने ला है बाबा से, उसने हाथ रख दिया और सारी की सारी अव्यक्त वाणियों का ज्ञान बुद्धि में, जैसे दिखाया है वो तेनालीरामा होता है कृष्णदेव राय के साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य 15वीं शताब्दी, वो देवी माँ की पूजा करता है, रात भर अनुष्ठान करता है, माँ माँ कहता है, सुबह माँ प्रकट होती है, कहती है ये ले, दोनों में से एक चुन, एक में धन है एक में ज्ञान, वो लेता है दोनों मिक्स करके पी लेता है। वो कहता है तुम बड़े चतुर निकले, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूं, सारे उपनिषद सारे ज्ञान सारे वेदों का ज्ञान अब तुम्हारा हुआ, बिना कुछ किए तुम ज्ञाता हुए, समस्त वेद समस्त उपनिषद संसार का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में स्वतः ही रहेगा, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और मेरा आशीर्वाद और मैं स्वयं स्वतः हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो बाबा भी ऐसा हाथ रख दे और ऊपर से सारी 1100 अव्यक्त वाणियों का ज्ञान वर्षा कर जाए। और वो समय पे याद भी आ जाए, ज्ञान बहुत सुन लिया, समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। 21 जनवरी 1969 फर्स्ट अव्यक्त वाणी, ज्ञान समय पे याद आ जाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो सबसे पहला काम जो करना है, हर दिन जो काम होना चाहिए और पहले 18 दिन जो रोज करना है, वो है अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। और जिसे पूरी मुरली पढ़ने में बहुत ही कंटाला आता है, 8 पेज की वो स्पार्क की किताबें हैं, अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड हुई है, बाबा के डायरेक्ट महावाक्य है, उन महावाक्यों का अध्ययन करना है जब जब दिनचर्या में समय मिले। अव्यक्त महावाक्यों को चुराना है अव्यक्त रीति से और बुद्धि में भरना है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, बिना प्रकाश के अंधकार नहीं जाएगा, अंधकार से कितनी भी लड़ाई करो नहीं जाएगा, एक ही मार्ग है, एक ही स्रोत है, एक ही उपाय है, वो है ज्ञान। स्वयं का टीचर स्वयं बनो, खुद ही बैठकर खुद ही को सिखाओ। दूसरा, भट्टिया, अपनी भट्टी रोज खुद निर्णय करना है, उसका तय करनी है। तो रोज खुद ही निर्णय करना है कि आज मेरी भट्टी का दिन है, कितना घंटे मुझे भट्टी करनी है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, शाम को दिन में सारे दिन भर भट्टी का आयोजन हो, उसका इंतजार नहीं करना है। मधुवन में जाए और तब भट्टी करे, इसका इंतजार नहीं करना है। सेंटर पर भट्टी का आयोजन हो, उसका इंतजार नहीं करना है। कोई मधुबन से आए और भट्टी कराए, उसका इंतजार नहीं करते बैठना है। स्वयं की भट्टी स्वयं ही निर्धारित करनी है। 4 प्रकार की भट्टियां हैं, ज्ञान की भट्टी, योग की भट्टी, दिव्य गुणों की भट्टी और सेवाओं की भट्टी। योग की भट्टी खुद ही निर्धारित करना है, खुद ही निर्धारण करना है, आज मेरी भट्टी का दिन है। जब भी सेवाओं से अवकाश मिले पहला काम ये करना है, बजाय इसके कि किसी से व्यर्थ की बातें करे और यहां वहां बुद्धि लगाए, अपनी भट्टी खुद निर्धारित करनी है। 3 घंटा मेरी भट्टी है, कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ के बाप को याद करना है। इतना याद करो कि आंखों से प्यार के आंसू आ जाए। आज की मुरली में जैसे वो आशिक माशुक, बाप को जितना जानोगे उतना उससे प्यार बढ़ेगा। तीसरा काम जो रोज करना है वो है चार धाम की यात्रा। ये वो काम बता रहे हैं जो हर दिन हरेक को करना है। मन से मधुबन में पहुंच जाना, चाहे इस सृष्टि में हम कहीं पर भी रहते हैं, इस धरातल पर कहीं पर भी हमारा निवास है, मन से उड़ के आ जाना। शांति स्तंभ पर शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आना, व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना और सारे पूर्वजों का इतिहास, यज्ञ का इतिहास जैसे सुना रहे हो बैठकर, और सारे व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर रहे हैं, सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त सिर पर। बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना, अगर उदास हो जाओ तो बाप से रूहरियान करने कुटिया में आ जाना। कहीं पर भी है 24 घंटे में एक बार कंपलसरी मधुबन में आना है। मन से फरिश्ता रूप धारण कर संपूर्ण संकल्पों के साथ, कंप्लीट विजुलाइजेशन, ये तीसरा काम हरेक को रोज करना है। चौथा ड्रिल, व्यस्त दिनचर्या में बीच बीच में कौन सी ड्रिल करनी है, अशरीरी हो जाने की। एक सेकंड में अशरीर, अभी अभी यहां से निकलकर सीधा सूक्ष्म वतन, अभी अभी यहां से निकलकर सीधा परम धाम, अभी अभी यहां से निकलकर सीधा वैकुंठ धाम, अभी अभी यहां से निकलकर सीधा मंदिरों में, मैं देवी हूं, दुर्गा हूं, काली हूं, गणेश हूं, हनुमान हूं। अभी अभी सेकंड में इस शरीर से निकलकर इस सृष्टि की परिक्रमा, कल की मुरली में था बाप क्या करते हैं, बच्चों की परिक्रमा करते हैं, इस सृष्टि की परिक्रमा करना, पांचों खंडों की एक साथ परिक्रमा करके आ जाना, मधुबन की परिक्रमा लगा के आ जाना, वहां बैठे बैठे सेवा केंद्र की परिक्रमा लगा के आ जाना एक सेकेंड, तो सारे दिन भर ड्रिल होती रहे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी ड्रिल, हल्की हल्की ड्रिल, छोटा सा संकल्प भी आत्मा में बल भर देता है। मैं आत्मा, मुझसे चारों ओर शक्तियां फैल रही है। अगला पुरुषार्थ, कल का स्लोगन क्या था, किसकी इकोनॉमी करनी है, संकल्पों की। अगला काम जो पूरे 18 दिन करना है वो है इकोनॉमी, स्थूल और सूक्ष्म हर प्रकार की। सूक्ष्म इकोनॉमी है संकल्पों की इकोनॉमी, सूक्ष्म इकोनॉमी है संकल्प वेस्ट नहीं करने हैं। गीता में लिखा है वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है वो विश्व की सबसे ज्यादा सेवा करता है। जिसके मन में संकल्पों का उहापोहो उधेड़बुन है वो अपने ही आप में खोया रहता है, संसार की क्या सेवा करेगा, तो खुद ही के संकल्पों में डूबा है, संकल्प विकल्पों में डूबे रहते हैं, चेतना ऊपर कैसे उठेगी, विश्व के बारे में कैसे सोचेगी। तो नए वर्ष में इकोनॉमी करनी है संकल्पों की, नए वर्ष में इकोनॉमी करनी है पैसों की, कोई भी पैसा व्यर्थ ना जाए। इकोनॉमी करनी है पानी की, हमारी वजह से कोई भी पानी वेस्ट ना जाए। इकोनॉमी करनी है इलेक्ट्रिसिटी की, हमारी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना जाए। इकोनॉमी करनी है पेट्रोल की, डीजल की, जहां पैदल जा सकते हैं वहां पर गाड़ी से ना जाए। स्थूल इकोनॉमी करनी है भोजन की, पता है ये हम नहीं खाते फिर भी थाली भर कर ले लिया और फिर फेंक दिया। इकोनॉमी करनी है शब्दों की, आवाज की। थाली ली, फेंक दी, चम्मच दूर से फेंक दिया। चीजों को फेंकना नहीं है, रखना है। मधुबन में आए, जैसे आए थे और जैसा कमरा लिया था जाते समय, वो कमरा वैसा ही हो, एक सिलवट ना हो उस बिस्तर पर। हमारी वजह से किसी के संकल्प ना चले। चाय ली, आधा पी और रख दी। पानी लिया, थोड़ा सा पिया, बाकी फेंक दिया। इकोनॉमी का वर्ष हो 2020, कहीं पर भी कोई भी वेस्टेज हमारी वजह से ना हो। सारे दिन में रात में चेक करना इकोनॉमी की टिक मार्क, यस की। उसके बाद में अगला संकल्प, अगली बात, अगली पॉइंट प्लानिंग में, फॉलो फादर। जिसने फॉलो फादर सबने सुना है, पर किस फादर को? उस फादर के बारे में क्या जानते हैं? क्या उसकी जीवन कहानी हमने पढ़ी है? कितनी गहराई से पढ़ी है? जिसने वो किताब अब तक नहीं पढ़ी है, आदिदेव इंग्लिश में और जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी हिंदी में, भाग एक भाग दो। इस नए वर्ष में सबसे पहला काम ये करना है, वो किताब पढ़नी है। और दादियों के, बाबा के साथ के सारे अनुभव, क्योंकि फॉलो फादर हजारों बार सुना है, पर फॉलो तो तब कर सकेंगे जब जानेंगे सुबह की साकार मुरली। जो जितना बाप को जानता है उतना वो उससे प्यार करता है। उसको जानते ही नहीं तो कैसे प्यार करेंगे? उसने किया क्या था, क्या पुरुषार्थ किया था? 93 एज की उम्र में ऐसा स्वास्थ्य, कोई बीमारी नहीं, कोई वैसे टाइप की बीमारी नहीं जिसमें व्यक्ति बेड रिडन हो जाए, इतना चुस्त। उससे पता चलता है कि जीवन कितना डिसिप्लिन, अनुशासन से गुजरा होगा। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, देखेंगे स्वयं अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख खड़ा है, और उसके सामने मैं ये जो कुछ हो रहा है उसकी प्रतिज्ञा करूंगा कि आज तक जो हो गया पुराने वर्ष में, अब वो रिपीट ना हो। नए वर्ष में नवीन संकल्प, नया पुरुषार्थ, प्रखर पुरुषार्थ। हिंदुस्तान की शान और चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप ने कभी प्रतिज्ञा की थी, जब तक स्वराज्य न पालू, जब तक चित्तौड़ को मुक्त न कर दूं, तब तक चार चीजें। पहला, महलों में नहीं रहूंगा, वन में रहूंगा, कुटिया में। जब तक चित्तौड़ को मुक्त न कर दूं तब तक। सोने और चांदी की थाल में नहीं खाऊंगा, पत्तों की थाली पर खाऊंगा। जब तक स्वराज्य न पा दूं तब तक। जमीन पर सोऊंगा। और चौथा क्या था? तकिया, दाढ़ी, बाल नहीं काटूंगा। जुनून, प्रण, प्रतिज्ञा, जोश। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 22,000 इधर से, 2,00,000 उधर अकबर के की सेना। प्रण, फॉलो फादर। किसको याद किया बाबा ने? संडे की मुरली। क्या किसकी याद आई? क्या फलानी की याद आई? किनारा छोड़ देना है और किनारे हो जाना है, दो शब्द थे उसमें। उसके बाद में अगला, जो सारे दिन भर में सोचना है, फॉलो करना है, शुभ भावना, गुड विशेस, के सारे दिन भर इस ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारी शुभ भावनाएं थी, विशेषतर उनके लिए जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने ग्लानी की, जिन्होंने विघ्न डाले, जो हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़े बाधक कंटक है, उनके प्रति। यदि गहराई से अपने आप को देखे तो पता चले कि हमारे अंदर शुभ भावना का स्टॉक बहुत कम है। जब तक कोई हमारी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, महिमा करता है, तब तक उसके लिए शुभ भावना है। जिस दिन वो ग्लानी करने लगता है, शुभ भावनाएं खो जाती है, विलुप्त हो जाती है कहीं। और शुभ भावनाओं के लिए बहुत श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। पूर्वज हूं, इष्ट हूं, आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। चाहे कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि किसी के भी वर्तमान संस्कार तुमको देखना ही नहीं है। क्या देखना है फिर? आदि अनादि संस्कार। चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, कैसा भी हो, काला काला कोयला, परंतु उसके वर्तमान जो संस्कार है वो देखना ही नहीं, क्योंकि वो वशीभूत है, परवश है, माया के अधीन है, ग्रहचारी है। उसे ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। इसलिए शुभ भावनाओं के स्टॉक को बढ़ाना है। रात को देखना है कि शुभ भावना रही, और नहीं रही तो क्यों नहीं रही, और क्या करे कि जिससे यह शुभ भावना बढ़ जाए। अगली पॉइंट, आदतें, हैबिट्स। 3 काम रोज करने, 3 नई आदतें। पहली आदत, अपने आप से बात करना। दूसरी आदत, बाबा से बात करना। और तीसरी आदत, ज्ञान का चिंतन करना। ये 3 काम हर एक ब्राह्मण को रोज करने हैं। अपने आप से बातें करना। क्या बातें करेंगे? अपने आप से क्या बातें करेंगे? बाबा, बस मैं भाग्यशाली आत्मा। और अरे मूर्ख, बुद्धू, आज कहा बाबा ने बेबी, आज कहा ना सुबह बेबी बुद्धि, इतनी भी समझ नहीं आई अभी तक? तुमको करना क्या है और तुम कर क्या रहे हो? क्या इसलिए आए थे यहां पर? क्या इसलिए मधुबन में आए थे? क्या इसलिए बाबा का बने थे? क्या इसलिए बाबा मिलन में आए थे? आए थे बाबा मिलन में, आधा समय बाहर के माया बाजार में जा रहा है, शांतिवन के बाहर। अपने आप से ही बात करना, दूसरा काम भगवान से बातें करना है। क्या बातें करेंगे उससे? ओहो, आहा, वाह, उसे बातें करनी है थोड़ी सी, उसे बहुत पसंद है। तीसरा, ज्ञान का चिंतन। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। ज्ञान तो बहुत सुन लिया है, बहुत पढ़ लिया है, अब वाक्य वाक्य का चिंतन करना है, शब्द शब्द का चिंतन करना है। एक शब्द पकड़ो, केवल परिक्रमा चिंतन करो। आज की मुरली में विचार सागर मंथन कर, दूसरों को समझाओ। ऐसे नहीं छोड़ देना है। शक्तिशाली पॉइंट्स आते हैं, पावरफुल पॉइंट्स आते हैं मुरलियों में, छूट ना जाए एक भी शब्द। पकड़ना है, अलग करना है, एक्सट्रैक्ट, अलग करना, देखना और फिर सोचना, ये क्या है, ये क्यों कहा। उसके बाद में अगली पॉइंट, इनकम। आज सबवे की साकार मुरली, घर बैठे तुम्हारी इनकम हो रही है। रात को चेक करना, आज मैंने क्या किया, आज मेरा नुकसान हुआ या फायदा हुआ। इनकम कितनी की चार सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा, कितनों की सेवा की, कितनों की दुआएं कमाई, कितनों के दिल से निकला दुआएं निकली। ऐसे ही दिन ना बीत जाए व्यर्थ में। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है अंग्रेजी में, हम एक वो चीजें करते जो अपने लिए है और दूसरी चीजें जो दूसरों के लिए। हम जाने के बाद केवल वही याद रहती है जो हमने दूसरों के लिए की थी, अपने लिए जो की थी वो किसी को क्या पता। कोई अपने ही पुरुषार्थ में लगे हुए है, वो भी अच्छी बात है, परंतु दूसरों की दुआएं वो किसी भी रीति से प्राप्त की जा सकती है। इनकम करनी है, और जब बहुत इनकम होती है तो दुकानदारों को क्या लगता है, कैसी खुशी होती है। खुशी होती है ना, ऐसी खुशी होनी चाहिए। खींचते रहना है माल, उन साहूकारों की लंका तो जलनी है। He who is first shall be the last, who is last shall be the first। बाइबल में लिखा है जो अभी बहुत आगे है वो वहां पीछे होगा, जो यहां पीछे वो वहां आगे होगा। यहां सूक्ष्म बातें कर रहे हैं, बीच वाला उसके बाद में अगली आदत, अगली पॉइंट, अगला पॉइंट नए साल में, जर्नलिंग अर्थात लिखना। इसमें दो बातें आती है, एक तो रोज सुबह की मुरली से कुछ टॉपिक्स निकाल लो और सारे दिन भर उस पर किसी एक टॉपिक पर कुछ तो लिखना है। दूसरी बात, रात को सोने से पहले, एक तो होता है चार्ट जिसका सबको पता है, पर दूसरी एक बात होती है डायरी लिखना। डायरी लिखने की आदत, मधुबन में आए हैं यहीं से एक डायरी लेकर जाएंगे और जिसमें एक तारीख से हर दिन की दिनचर्या लिखेंगे। आज शुरुआत करेंगे बाबा कॉमा, आज इतने बजे उठा, फिर इससे मिला, फिर ये किया, फिर यहां गए, फिर वहां गए, फिर उसके पास गए, फिर बहुत सारे आंसू आ गए, फिर तुमको याद किया पर तुम कहीं दिखाई नहीं दिए, अभी ठीक है, और लास्ट में बाबा गुड नाइट। दिनचर्या लिखना, जर्नलिंग, जर्नलिंग अर्थात अपनी डायरी लिखना, अपनी दिनचर्या लिखना। अमेरिका का founding father बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसकी एक आदत थी कि रोज रात में अपनी डायरी लिखता था। 13 पॉइंट्स थे उसके पास, वो चेक करता था, आज ये किया ये किया, कितना हम्बल रहा, कितना संतुष्ट रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, और दिनचर्या लिखता था सुबह से रात तक की। ये बहुत काम आएगी, क्योंकि आज जिस बात ने हमको हर्ट कर दिया, या आज जिस प्रलोभन ने, जिस मोह ने, जिस माया ने, जिस वासना ने पकड़ लिया, हर संडे को अपनी डायरी देखनी है, 6 दिन क्या क्या लिखा, क्या क्या हुआ। 7वें दिन संडे को जब देखेंगे तो पता चलेगा ये इतनी छोटी बात, ये भी कोई रुलाने वाली बात है, इससे भी मैं रोया। नहीं तो हम अपने इमोशंस को भूल जाते हैं। To remember the past emotions is the security for future. लिखना है, एक तो रात को लिखना, अपनी डायरी लिखना, चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, चार्ट उसमें भी इंक्लूड कर दिया जा सकता है, वो दूसरी बात है, लिखते लिखते उसी में चार्ट डाल दो। पर ये इससे फायदे, लेखन शैली में उन्नति होगी, लिखने की आदत होगी, और बाबा को रोज एक पत्र लिखा जाएगा। वो उसकी शुरुआत हम बाबा से कर रहे हैं और लास्ट में गुड नाइट कर रहे हैं, रोज का एक लेटर है वो एक, और जिसमें सच्चाई सफाई होगी। बाबा ने उस दिन भी कहा था, कुछ भी छिपाओ नहीं, नहीं तो घाव नासूर हो जाएगा। लिखना है, रोज डायरी लिखनी है। उसके बाद में अगला काम जो करना है वो है कार्मिक अकाउंट। नया कोई भी हिसाब अब बनाना नहीं है, पहले ही बहुत सारे हिसाब है, अब कोई भी नया हिसाब बनाना नहीं, जो बन चुके हैं उन्हीं को चुकतु करना है, जो नए बंधन पुराने हैं उन्हीं से मुक्त होना है, नए बंधन, नए संबंध, नई बातें, इसमें नहीं जाना है। जितने लोगों से संबंधित है बस, अब नए नए बंधनों को निर्माण नहीं करना है। इससे दोस्ती करूं, उससे दोस्ती करूं, उससे दोस्ती बढ़ाऊं, और फिर लेन देन, और फिर फंसना। ये घर जाने का समय है, ना कि विस्तार करने का, समेटने का समय है। कार्मिक अकाउंट सेटल करते जाना है, देखना है आज सारे दिन भर में मैंने नए बंधन बनाए या पुरानों को नष्ट किया। ये भी एक प्लानिंग है नए वर्ष की, नया वर्ष हमारा सर्व कर्म बंधनों से मुक्ति होने का वर्ष हो, मुक्ति वर्ष। उसके बाद में एक बाप से प्यार, लव फॉर वन फादर। देखना है रात को सोते समय, आज सारे दिन भर में देहधारियों से प्यार किया कि एक बाप से प्यार किया, किस किस से प्यार था, कहां कहां बुद्धि गई, किस किस में बुद्धि गई, कहां कहां फंसी। संडे की मुरली था, मुरमे था, कुछ मिनट के लिए भी किसी की याद आ गई तो क्या होगा, झुकाव है वो, अंत में वही याद आएगा। उतना समय तो बाप की याद नहीं थी ना, सूक्ष्म में भी संकल्पों में भी यही शब्द ही गड़बड़ करता है। ये अच्छा लगता है, सभी विशेष है सब अच्छे है, सभी विशेष है और सब अच्छे है, यही शब्द में ही गड़बड़ है। सेवा के साथी दो बातें बताई थी, देख तो सूक्ष्म लगाओ, और दूसरा सूक्ष्म साधन सहारा, ये दोनों माया है, दोनों से मुक्त होना है। तो एक बाप से ही प्यार हो, एक के प्रति ही समर्पण हो। उसके बाद में अगली पॉइंट मनसा सेवा। रात को सोते समय चेक करना, आज हमने 5 तत्वों को सकाश दी, कंपलसरी रोज 5 तत्वों को सकाश एक बार या दो बार देनी है, पहला काम। दूसरा काम, नाउम्मीद आत्माओं को उम्मीद देनी है, बेसहारे को सहारा देना है, जो हिम्मतहीन है उन्हें पंख देने हैं हिम्मत के, अपनी आंखों की पिचकारियों से आत्मा में सुख शांति भरनी है, अशांत को शांति, दुखी को सुख, ये सारे भटकती आत्माओं को राह ठिकाना देना है। कितने सारे काम है, ये सब मनसा के काम है। मनसा जितनी शक्तिशाली होगी अपने आप ये सेवा होगी। स्थूल सेवा तो सभी कर रहे, परंतु नए वर्ष में हमको फोकस करना है, मुझे अधिक से अधिक क्या करनी है, मनसा सेवा करनी है। आत्मा स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए और मनसा सेवा होती रहे। चेकलिस्ट है ये, आज नहीं की तो सोने से पहले रुको, सोने की इतनी जल्दी नहीं है। 5 मिनट विश्व को सकाश दो, बाबा ने तो यहां तक कहा है, रात को अगर अचानक नींद खुल जाए तो क्या करो, सो जाओ? नहीं, सकाश दे दो आसपास वाले को और फिर सो जाओ। अचानक नींद खुल गई तो विश्व को सकाश दो, मुझसे किरने फैल रही है, फैल गई और फिर सो जाओ। सबकॉन्शियस माइंड में भर देना है सकाश को, उसके बाद में अगली पॉइंट, नो कंप्लेंट नो क्वेश्चन। नए ईयर की प्लानिंग में हजारों चीजें आएगी, हजारों चीजें जाएगी, प्रश्न ही पूछते रहेंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा क्यों होना चाहिए, यहां बहुत ठंड है, हम तो जा रहे नीचे, हम यहां नहीं रहेंगे, ये कमरा ठीक नहीं है, यहां पानी नहीं है, यहां लाइट नहीं है, ये भोजन में वो ज्यादा है, हमें ये भोजन सूट नहीं करता, हमें ऐसा हमें वैसा, कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स है हर चीज के बारे में, हजारों कंप्लेंट से भरा हुआ मन। नए वर्ष में हर वस्तु को, हर व्यक्ति को जो जीवन में है, और हर स्थान को और हर परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस। भगवान की मदद आएगी। दिखाया एक गर्भवती हिरनी जा रही है, सामने देखा तो नदी, पीछे देखा तो जंगल है जिसमें आग लगी है, एक तरफ देखा तो शेर आ रहा है, दूसरी तरफ देखा तो शिकारी, क्या करे, प्रसव पीड़ा। ऊपर देखा तो बादल, बिजली भगवान के ऊपर छोड़ देती है स्वयं को, शून्य में चली जाती है, मैं कुछ हुई नहीं, संपूर्ण समर्पण, सरेंडर। क्या कर सकती है वो अकेली, क्या करेगी अगर चाहे भी तो, छोड़ देती है। ऊपर से बिजली कड़कती है, बिजली की आवाज से शिकारी की आंखें चौंधिया जाती है, तीर मारता है, जाकर शेर को लगता है, शेर घायल है, शिकारी सोचता है ये पीछा करेगा, भागता है, अचानक बारिश होती है, आग बुझ जाती है, हिरनी अपने घर। डिवाइन इंटरवेंशन, छोड़ देना है, कई बार वो करेगा, उसके ऊपर छोड़ दो, सारे मार्ग स्वतः खुल जाएंगे, सारी बेड़ियां खुल जाएगी, और सुरक्षित पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। उसके बाद में अगला, ऑप्टिमिज्म अर्थात सकारात्मकता, पॉजिटिव थिंकिंग का प्रयोग करना है। कितनी भी निगेटिव परिस्थिति हो, कितने भी निगेटिव लोग हो, कितनी ही निगेटिव बातें कर रहे हो, उन सब में भी अपने मतलब की बात निकाल लेनी है, पॉजिटिव वाली। हर चीज में पॉजिटिविटी छुपी हुई है, हर निगेटिव में पॉजिटिव छिपा हुआ है, हर असंभव में संभव छिपा हुआ है। तो चाहे कितनी भी परिस्थितियां कैसे भी हो, ढूंढना है उसमें, दिनचर्या कैसी भी हो, रात को सोते समय सोचना है इसमें क्या कल्याण था, जरूर कुछ तो रहस्य होगा ड्रामा में, इसलिए तो ये हुआ, इस ड्रामा की हर घटना हर दृश्य मुझे ढकेल रहा है संपूर्णता की ओर, यही संकल्प रखना है। इंच बाय इंच सरक रहा है पुरुषार्थ आगे। उसके बाद में अगली पॉइंट, प्यूरिटी, संपूर्ण पवित्रता। रात को सोते समय सब चेकिंग करनी है, प्यूरिटी रही सारे दिन भर, और कैसी रही और किस तल की रही, कल्पना और स्वप्न के तल में भी वो भंग ना हो. फैंटेसी एंड ड्रीम्स. उसके बाद में क्यू, फिट अ बैड हैबिट. एक बुरी आदत हर दिन छूटती जाए. वो कोई भी हो सकती है, अमृत वेला उठे उसके बाद में सोने की आदत, वो चिंतन का समय और हम सो गए. आलस की आदत, अनियंत्रित भोजन की आदत, ओवर ईटिंग की आदत, अधिक खाने की आदत, अधिक बोलने की आदत, दूसरों की बातों में इंटरफियर करने की आदत, अपने ही संस्कारों को स्टडी करने. आज की मुरली में वाक वरदान, ये रावण की प्रॉपर्टी है. रावण की प्रॉपर्टी को अपना मानो तो क्या मिलेगा? दुख. इसलिए क्या करो, बाप को दे दो. दे दो तो हल्के रहेंगे, बोझ नहीं रहेगा, उड़ सकेंगे. वरदान है ना आज. उसके बाद में रियलाइजेशन. हर चीज का लक्ष्य रखना है, मुझे अनुभव करना है. ज्ञान बहुत सुन लिया, योग कर रहे पर अनुभव नहीं हो रहा है हर चीज का. अभी अभी लास्ट सीजन, लास्ट जो शांतिवन मुरली चली थी, चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो. आज सारे दिन भर में जो कुछ किया, अनुभव क्या हुआ? ज्ञान तो सभी को पता है, पर अनुभव क्या हुआ उसका? वाक्य मुरली तो सबने सुनी, पर ये जो मुरली चली, इसका मुझे क्या अनुभव हुआ? जितना गहरा अनुभव, उतना गहरा परिवर्तन. द डीपर द रियलाइजेशन, द डीपर शैल बी द ट्रांसफॉर्मेशन. अगला, मौन और एकांत. साइलेंस एंड सॉलिट्यूड. व्यस्त दिनचर्या में मौन को चुराना है, व्यस्त दिनचर्या में एकांत को चुराना है. चाहे कुछ भी हो, कुछ समय मुझे अपने लिए चाहिए जिसमें मैं संपूर्ण मौन में हूं, संपूर्ण एकांत में हूं, किसी का आवाज नहीं है उसमें. और उस एकांत में और उस मौन में उस परम से शक्तियां लेना, इसी को राजयोग कहा जाता है. राजयोग इज ड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम द सुप्रीम इन साइलेंस एंड सॉलिट्यूड. विदेशियों की एक किताब है जिसमें राजयोग की ये परिभाषा लिखी है. राजयोग वो कला है जिसमें आत्मा एकांत और मौन में बैठकर परमात्मा से परम शक्तियां अर्जित करती है. ये परिभाषा है राजयोग की. मौन और एकांत दो शब्दों का प्रयोग है. लास्ट 20वीं पॉइंट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. चाहे कुछ भी हो जाए, नए पुराने वर्ष में कितना टाइम वेस्ट किया, अगर पूरा टाइम निकाला जाए तो कितने घंटे होंगे? अगर कोई कैलकुलेट करके हमें बता दे, ज्ञान योग को छोड़कर, ज्ञान योग धारणा सेवा को छोड़कर तुमने जो टाइम निकाला है, वो बाबा से कहो कि कितना निकाला, मुझे जरा बताना. जरा बाबा को पूछ लेना 31 दिसंबर, कल अकाउंट्स हमारा, ही इज अ सुप्रीम ऑडिटर है, वो बता देगा तुम्हारा इतना है. कितना टाइम वेस्ट कर दिया व्यर्थ में, निगेटिव में, पास्ट के चिंतन में, भविष्य की चिंताओं में, एंग्जाइटी में, भय में, गैर पुरुषार्थी बातों में. एक साकार मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, कई ब्राह्मण बच्चे हैं जिन्होंने कीचड़ पट्टी की बातें अपनी बुद्धि में बिठा के रखी है. तो ऐसी 20 बातें हैं, 20 चेकलिस्ट 2020 की प्लानिंग में. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. सबसे पहला, A4, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन रोज हो. थोड़ी सी भी अव्यक्त मुरलिया पढ़ ली तो पावर आ जाएगी. एक वाक्य भी पढ़ लिया और उसका गहन चिंतन किया तो आत्मा में बल भर जाएगा. एक लाइन, एक वाक्य या एक पूरी मुरली जिनके पास समय है, पर अव्यक्त मुरलियों को 1100 है, शुरुआत 1 तारीख से। दूसरा, स्वयं की भट्टी खुद ही निर्धारित करनी है, आज मेरी भट्टी है। खुद ही अपने मन को आदेश दे देना, अरे मन तुमको पता नहीं आज भट्टी का दिन है, तुम भूल गए भुलक्कड़, अरे मूर्ख जाग। नीरो वॉज फिडलिंग व्हेन रोम वॉज बर्निंग, रोम का राजा था नीरो, अपनी बांसुरी अपने वो गिटार बजाते रहा, रोम जल रहा था, पता ही नहीं उसको। तीसरा, चार धाम की यात्रा 24 घंटे में एक बार होनी चाहिए, दिन भर नहीं हुई तो रात को सोते समय मधुबन में पहुंच जाना, अमृत वेला इधर ही करके चले जाना फिर। चौथा, ड्रिल 1 सेकंड में शरीर से बाहर, मुर्दा कर्मातीत अर्थात कुछ दिनों पहले साकार मुरली थी, मुर्दा मैं मुर्दा हूं। जीती जागती लाशू, अच्छा सामान है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में इकोनॉमी करनी है, बहुत वेस्ट कर लिया, अब वेस्टेज नहीं करना है। मधुबन में तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, यहां आए थे पुण्य कमाने और यहां पर वेस्ट करके गए, पाप लेकर जाएंगे। एक एक रोटी का हिसाब देना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े का। बाबा पूछेगा मेरे मधुबन में आए और कितनी रोटियां तोड़ी और सेवा क्या करके गए, सेवा तो दूर डिससर्विस करके गए। धर्मराज तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा। उसके बाद में फॉलो फादर, बाबा की जीवन कहानी पढ़नी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी है वो रिवाइज करें मन ही मन। अगला जी, गुड विशेस, शुभ भावनाओं के स्टॉक को बढ़ाना है। अगला हैबिट्स, 3 बातें बताई, खुद से बातें, थोड़ी अपनी तारीफ भी करना है, वाह वाह तुमने ये क्या काम कर दिया आज, क्या अमृत वेला किया, वाह बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहो, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने आज तक, जो नहीं किया तुमने कर दिखा। अगला बाबा से बातें, तीसरा ज्ञान का चिंतन, हर मुरली का चिंतन हो, ऐसी मुरली ना चले जाए, आई और इधर से सुनी और इधर से गई, क्या थी, बहुत अच्छी थी, पति ये मत पूछना क्या थी। अगला इनकम करते रहनी है, कमाई, भूख लग जाए, साहूकार होते हैं ना कैसे भूखे होते, पैसे 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 पैसे। एक सूफी संत अपने शिष्य के साथ जा रहा था, वो देखता है शाम का समय, अजान की सुनाई दी उसको, उस शिष्य कहते हैं आपको कैसे सुनाई दी इतनी भीड़ में, लोग दुकानें बंद कर रहे, इतनी आवाजें हो रही है, इतने ग्राहक चिल्ला रहे, लोग इतने बाजार में, तुमको उस अजान की आवाज आई। वो कहते हैं सुन रुको, सिक्का लेता है फेंकता है, सारे लोग देखते क्या है क्या है क्या है, इनको कैसे आवाज आई पैसों की, वैसे मुझे उसकी आवाज आई। अगली जर्नलिंग, डायरी खरीदना है कली और डायरी लिखना 1 तारीख से चालू करना है, ऊपर डेट टाइम, कौन सा स्थान है, मधुबन में लिख रहे हैं, सेवा केंद्र पर है, घर पर है, ऑफिस में है, जहां कहीं है वो, ऊपर 3 चीजें, शुरुआत में बाबा कॉमा सारी दिनचर्या, लास्ट में गुड नाइट, कल मिलेंगे, अमृत वेला उठा देना। अगला कार्मिक अकाउंट सेटल करने, अगला लव फादर अलोन, अगला मनसा सेवा, अगला नो कंप्लेंट नो क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस कर लिया अभी शांत बैठ जाओ। अगला ऑप्टिमिज्म, हर चीज में पॉजिटिव को ढूंढना। अगला प्यूरिटी, संपूर्ण प्यूरिटी। अगला क्विट कर देना, जो आदत हमारे पुरुषार्थ में बाधा है उसको यही मधुबन में छोड़कर चले जाना। अगला रियलाइजेशन, अनुभव करना है चीजों का। अगला सॉलिट्यूड साइलेंस और लास्ट टाइम वेस्ट नहीं। ओम शांति।